G7 कॉन्फ्रेंस के बारे में डॉक्टर अता मोहम्मद का कहना था।
ये जो G7 का इजलास हुआ है शागलवा क्यूबेक में, इसमें इख्तलाफात बिल्कुल खुलकर सामने आए हैं। US एक तरफ खड़ा है और यूरोपियन यूनियन ब्रिटिश के साथ एक तरफ खड़ा है। और ये जो G7 का समिट है, इसको अब कहा जा रहा है कि ये G4 रह जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन चार कंट्रीज जो हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, और उसमें थ्रेसा मे जो है ना, वो काफी किरदार अदा कर रही है। और थ्रेसा मे की तरफ से दावा आया कि वो ट्रंप के साथ निगोशिएशन में है, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से भी सख्त रद्द अमल आया है। और मेरे ख्याल में एक ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। इख्तलाफात बिल्कुल वाजे आए और यूएस एक स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, ईयू अपने अलाइज के साथ दूसरे स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि ये यूएस की तरफ से इंडोर्स किया गया है कि रशिया को शामिल किया जाए, जो से जर्मनी की तरफ से बिल्कुल क्लियर एक मौका किया गया। यूरोपियन यूनियन बिल्कुल एग्रीड नहीं है और तैयार नहीं है रशिया को शामिल करने के लिए जब तक यूक्रेन का जो इशू है वो सॉल्व नहीं होता। और यूरोपियन यूनियन से ये भी कहा गया है, स्पेशली जर्मनी की स्पोक्सपर्सन की तरफ से, कि अभी तक रशिया ने वो जो एग्रीड कंडीशंस थी उनको फॉलो नहीं किया।
उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बारे में जो ट्वीट किया है उस पर कनाडा ने अभी अपने रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब WTO के लिए भी खतरात पैदा हो गए हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जफर बुखारी ने G7 में इख्तलाफात का जिक्र करते हुए कहा कि तिजारती और महसूलात से मुतालिक इख्तलाफात के अलावा ईरान के साथ जौहरी माहदे पर भी सदर ट्रंप और यूरोपीय लीडरों के दरमियान इख्तलाफात थे।
अदर देन ट्रेड जो सबसे ज्यादा स्टिकिंग पॉइंट था वो ईरान का भी था, कि ईरान के ऊपर यूरोपियंस ने एग्री नहीं किया कि हम डील को 100% स्क्रैप कर दें, जिस तरीके से कि ट्रंप चाह रहे थे। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फील किया कि वन वर्सेस द रेस्ट ऑफ द सिक्स G7 की वजह से। और एक और जो चीज जो कि इनके पार्टिसिपेंट्स ने कॉन्फ्रेंस की अग्री नहीं की, जिसमें कि ट्रंप को ये बर्दाश्त करना पड़ी एक समझें कि अपोजिशन फ्रॉम द ईयू, और वो थी रशिया की इंक्लूजन, क्योंकि रशिया यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ G8, जबकि रशिया को इन्होंने यूक्रेन वार की वजह से इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। तो ये कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे इसके अंदर।
G7 के मुस्तकबिल के बारे में उनका कहना था,
नहीं फ्यूचर तो G7 का एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखें यूरोप और अमेरिका ने जो एक चीज हमेशा से रखी है, और खासतौर पे पिछले तकरीबन आप ये देखें 15-20 साल से इनके एग्जिस्ट करती है, इनके यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो ट्रेड वार है, जिसमें कि यूरोप बड़ी हैवी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है वर्ल्ड मार्केट के लिए अगर उनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है, और एट द सेम टाइम यूएस के साथ भी ये था कि इनके यहाँ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो एक्सेसिव प्रोडक्शन थी उसके ऊपर USDA सब्सिडीज देता था, तो ये तो इनके यहाँ एग्जिस्ट की है। इनके जो इम्बैलेंस था वो दूसरी कमर्शियल प्रोडक्ट के ऊपर इम्बैलेंस था, और उस गैप को ब्रिज करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ये चीज इंट्रोड्यूस की थी। बाकी ये है कि इनके यहाँ वर्किंग रिलेशनशिप भी चलता रहेगा आगे चल के। अब ये देखना है कि यूरोप की कितनी मिलती है प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉर्थ कोरिया के इशू के ऊपर, और एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी सपोर्ट ले सकते हैं ईरान के इशू के ऊपर।
मुर्तुजा हैदर ने कहा कि कनाडा के लोग इस अंदाज की सफारतकारी और इस लबुल लहजे पर हैरतजदा हैं।
लोग हैरत से इस तमाशे को देख रहे हैं, और ये तमाशा इसलिए है कि इससे पहले इस किस्म की डिप्लोमेसी कैनेडियंस ने नहीं देखी।
G7 के बारे में उनका कहना था,
तो ऐन मुमकिन है कि ये ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी के दरमियान तो G7 के मामलात कुछ दगगू रहे। पहले वो G7+1 थी, तो रशिया अलग हो गया, हो सकता है ये G6+1 हो जाए और अमेरिका थोड़ा साइड पे चला जाए। लेकिन जो भी होगा ये सिर्फ टेम्पररी होगा, ये आरजी होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब प्रेसिडेंसी खत्म होगी तो तब अमेरिका को ये सारे मामलात जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, G7 है, इन तमाम आलमी इदारों में अपनी शमूलियत को बहाल करना होगा। लेकिन ये अगले 4 या 8 बरस जो है ये मुश्किल नजर आते हैं अमरीका के लिए।
ये थे प्रोफेसर मुर्तुजा हैदर, जिनका कहना था कि G7 के मुस्तकबिल के लिए کوئی خطرات نہیں ہیں، لیکن آنے والے چند سال یقیناً مشکل ثابت ہوں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔